Hello and welcome to this very first episode of Policy Talk with Yatish Rajawat. In this bilingual series, which will be in Hindi and in English, public policy and governance expert Yatish Rajawat explores the policy matters at state, city, and even in district level. Occasionally, it will also cover policy makers at the central level. And the idea is to bridge the gap between the central government policies and their execution and implementation status on the ground. In this episode, he speaks to Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar on how life and economy are being fast-tracked in the state and what a common man can expect from the state budget.
आज हम हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री खट्टर साहब के साथ चंडीगढ़ में मिल रहे हैं। खट्टर साहब कोविड काल के दौरान काफी व्यस्त रहे हैं और प्रदेश भी काफी मुश्किलों के दौर से निकला है। बजट की तैयारियां हो रही हैं और सरकार 12 तारीख को शायद बजट पेश करेगी संसद में। ये मीटिंग इससे पहले की जा रही है, इसलिए इसमें हम ज्यादा आंकड़ों पे या बजट पे बात नहीं करेंगे, लेकिन एक उनसे निर्देश जरूर लेंगे कि बजट में आम आदमी क्या एक्सपेक्ट कर सकता है। शुरू करने से पहले खट्टर साहब बहुत बहुत बधाइयां कि आप प्रदेश को कोविड के दौरान निकाल लाए।
धन्यवाद यतीश जी।
मैं आपसे ये जानना चाहता था कि पिछले एक साल के अंदर कोविड के दौरान प्रदेश में पलायन हुआ है, लेबर चला गया, एग्रीकल्चर लेबर चला गया, सर्विसेज का लेबर चला गया, इकोनॉमी पे फर्क पड़ा, तो आर्थिक स्थिति इस समय कैसी है, रेवेन्यू रिसीव कैसी दिख रही है आपको इस साल की, आगे के लिए आपकी क्या फोरकास्ट है?
देखिए अतीश जी, ये जो कोविड का पीरियड है, इसको वास्तव में एक अनएक्सपेक्टेड ऐसी एक जिसको मैं कैलामिटी कहूँगा, इस देश में क्या दुनिया में पूरे में आई, हम प्रदेश के लोग भी इससे प्रभावित हुए
जी।
और हमने पिछले वर्ष भर का जो बजट बनाया था, शुरू के महीनों में अप्रैल मई जून जुलाई में तो एकदम जो अनएक्सपेक्टेड जो बदलाव उसमें देखने पड़े, वो सब कोविड के कारण से हुआ था। इंडस्ट्री बंद हो गई, टैक्सेस का जो रेवेन्यू रिसीट्स था वो सारा डाउन आ गया और व्यापार बंद हो गया। दो महीने तो लगभग लॉकडाउन के कारण से सब गतिविधियाँ बंद हो गई। इसके कारण से मैं समझता हूँ पहले 6 महीने इस वर्ष के अप्रैल से सितंबर तक हम लगातार अपने रिसीट्स में डाउन थे और टोटल जो लॉस उस समय तक हो गया था लगभग 17,000 करोड़ रुपए का लॉस हो गया था। लॉस का ना मानो हमारी प्राप्तियां
रेवेन्यू में कमी आई, 17,000 करोड़
रेवेन्यू के हिसाब से कम हो गई थी
जी।
लेकिन बाद में धीरे धीरे कोविड का प्रभाव कम होना शुरू हुआ, इंडस्ट्री शुरू हो गई, व्यापार भी शुरू हो गए, हमारा रेवेन्यू जब बढ़ा तो बढ़ते हुए अक्टूबर के बाद ये बढ़ना शुरू हो गया और उसके बाद 4 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर एंड जनवरी, उन 4 महीनों में हमने लगभग 8,000 करोड़ रुपया उसमें से पिछले वर्ष की तुलना में और अधिक हमको आया, बल्कि हमारे जो अनुमान थे उससे भी ये 8,000 करोड़ रुपया ज़्यादा राजस्व आया। तो एक प्रकार से हम 2 महीने पहले 10,000 करोड़ रुपये के एक प्रकार से
प्लस पे बैठे,
कम थे, लेकिन अब अगले 2 महीने में फरवरी और मार्च में मुझे लगता है 3 या 4,000 करोड़ रुपया और रिकवर होगा। तो कुल मिलाकर के वर्ष अंत तक, ये जो 2020-21 का वर्ष है, इसमें हम लगभग 6,000 करोड़ रुपया ही डाउन रहेंगे, जो परसेंटेज वाइज लगभग 2% हमारे कुल मिलाकर के जीएसडीपी का एक कमी कहें, राजस्व प्राप्तियों की कमी कहें, ये सब हुआ है। उसी में अगर एक बात और जोड़नी हो तो जो 2 महीने का लॉकडाउन पीरियड था उसमें खास करके जो हमारे काम चल रहे थे, इंजीनियरिंग के काम खास करके जो विकास की गति थी वो रुक गए और उसके रुकने के कारण से खर्च भी हमारा कम हुआ। तो प्रदेश का ये जो खर्च अनुमानित था वो भी अपना लगभग 6-7,000 करोड़ रुपया कम ही होगा, इसलिए खर्च भी कम हुआ है, रेवेन्यू भी कम आया है, ओवरऑल हमारे पैरामीटर्स में अंतर नहीं आएगा,
डेफिसिट में ज्यादा अंतर
नहीं आएगा।
तो प्रदेश में जो माहौल चल रहा है, एक तरफ किसान नाराज हैं, कह सकते हैं पॉलिटिकली नाराज हैं या इकोनॉमिकली नाराज हैं। केंद्र सरकार ने हेल्थ बजट में अपने बजट में काफी बढ़ोतरी की है, करीब 140% के तकरीबन बढ़ोतरी की है। प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी टर्शरी हेल्थ केयर सर्विसेज को बेटर इम्प्रूव करने के लिए, बेटर प्रोवाइड करने के लिए पहली बार केंद्र सरकार काफ़ी काम कर रही है। आपकी प्राथमिकता हेल्थ और एग्रीकल्चर को देखते हुए क्या होगी?
देखिए, हर वर्ष जो बजट घोषित होता है यतीश जी, उसमें किसी न किसी सेक्टर की प्राथमिकता होती है। पिछले वर्ष का जो हमारा बजट था उसमें हमारी शिक्षा पर प्राथमिकता थी और शिक्षा में हमने 15% अपना बजट बढ़ाया था। शिक्षा पर काम भी हुआ है, शिक्षा में बहुत हमारे यहाँ स्तर भी ऊंचा हुआ है, स्किलिंग के काम भी आगे बढ़े हैं, लोगों को रोजगार करने के लिए हमने उनको काबिल भी बनाया है और अब हमारे यहाँ शिक्षा की समस्या उस प्रकार की ज़्यादा नहीं है। फिर भी धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहे हैं तो शिक्षा एक आसपास के प्रदेशों में हमने अपना एक रिजल्ट्स भी सुधारे हैं, हमारे ड्रॉप आउट भी कम हुए हैं, हमारा बच्चा जो है स्कूल का और फिर आगे कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए बढ़ता है। इस बार क्योंकि कोविड का वर्ष हमने भुगता है तो निश्चित रूप से जैसे केंद्र ने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, हम भी हेल्थ और कृषि इन दोनों पर भी फोकस करेंगे क्योंकि कृषि हर वर्ष का एक ऐसा फीचर होता है जिसमें लगातार काम करने की आवश्यकता है। आज भी हमारा ग्रामीण क्षेत्र का जो किसान है, मजदूर है, कृषि पर आधारित है, उसमें लगातार काम करने की आवश्यकता है तो हम उस पर भी काम करेंगे और खास करके उसमें जो सिंचाई का है इस पर हम पैसा ज़्यादा लगाएंगे सिंचाई में भी, क्योंकि पानी सीमित है और पानी को ठीक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए उसी पानी में हम पूरा काम कर सकें, जब तक और अधिक नहीं मिलता तब तक इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत होगी। पानी की रिचार्जिंग की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं, पानी टेल तक भी पहुंचा रहे हैं और मोर ओवर माइक्रो इरिगेशन पर हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पर हम फोकस करते हुए एक सेक्टर और है जिसका मैं उल्लेख करना चाहूँगा, वो है गरीबों की चिंता करना, गरीबों की भलाई करना। आज तक ये नारे ज़रूर चलते रहे हैं लेकिन हम उसको फोकस कर रहे हैं एक बहुत एक कैलकुलेटेड एक तरीके से कि हम अपने पूरे प्रदेश में हर परिवार का जो उसका सोशो इकोनॉमिक उसकी जो स्थिति है, हर परिवार की आवश्यकताएं क्या है, हर परिवार का जो अच्छे संपन्न परिवार हैं उनकी क्षमताएं क्या हैं, वो क्या ड्यूटीफुल होकर के समाज को आगे बढ़ाने में खड़ा करने में क्या योगदान कर सकते हैं, तो हर एक परिवार का एक उसका एक बायोडाटा, उसका एक डाटा,
परिवार पहचान पत्र
के नाम से, तो परिवार पहचान पत्र के नाम से कर रहे हैं। और हमारा पहला टारगेट उसमें हमने रखा है कि लोवेस्ट इनकम ग्रुप के जो लोग पहचाने जाएंगे परिवार के नाते, ऐसे 1,00,000 परिवार उनको तय करके और विभिन्न विभागों के माध्यम से उनको रोजगार, उनकी नौकरी, उनका स्वयं रोजगार, ऐसी सब सहायता करके उनको न्यूनतम 1,00,000 रुपया साल की इनकम जरूर हो ऐसा हम सुनिश्चित करेंगे और बहुत आसानी से हम कर लेंगे। इस पहले चरण में 1,00,000, फिर इसी प्रकार हर चरण में 1-1,00,000 परिवार जो न्यूनतम आय के, न्यूनतम ऐसी एसेट्स के, आय के, उनके अपने जो भी उनके पास क्षमता है उसको आगे बढ़ाते हुए 1-1 कदम आगे बढ़ेंगे। तो अंत्योदय की योजना को आगे बढ़ाते हुए हमारा ये एक
प्रधानमंत्री की अंत्योदय अन्न योजना था उसको आपने बढ़ा के अंत्योदय
उत्थान योजना
बना दिया। बहुत बढ़िया। तो ये आपने कहा कि आप कृषि में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे इरीगेशन पे और बढ़ावा देंगे माइक्रो इरिगेशन पे, हेल्थ में आप कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेंगे और किस किस दिशा में करेंगे?
देखिए, हेल्थ में पहला तो ये है कि हमने जो वेलनेस सेंटर्स प्रधानमंत्री जी ने कल्पना दी है कि वेलनेस सेंटर है, हेल्थ की समस्या ना आए उससे पहले हम जनजीवन लोगों का वो ऐसे सुधरे आते हैं, ऐसी है उसमें योगा भी है, उसमें व्यायाम भी है, उसमें आयुर्वेद भी है।
इन वेलनेस सेंटर बनेंगे,
वेलनेस हमने बनाने शुरू कर दिए हैं
जी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
नहीं, इसको हम बहुत नीचे के लेवल पर गांव-गांव में यानी गांव में पार्क कम व्यायामशाला पहले हमने बनाया था, उसका नाम अब योग कम व्यायामशाला रख दिया है। अच्छा। तो योग कम व्यायामशाला हर गांव के अंदर 2 एकड़ जमीन पर एक अलग से बनेगा ताकि वहां के लोगों को
वहां वेलनेस में तो योग और व्यायामशाला होगी, हेल्थ केयर के लिए क्या होगा
बता रहा हूं। उसके बाद अब जितनी हेल्थ केयर की जितनी आवश्यकता है उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले तो हमारे पास जो हेल्थ को संभालने के लिए स्टाफ होता है डॉक्टर्स
जी,
नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, इसको पर्याप्त मात्रा में क्रिएट करेंगे। हमारी सबसे बड़ी समस्या है
कि डॉक्टर्स की नौकरियां खुलेंगी,
डॉक्टर्स की कमी, मैं बता रहा हूँ पहले तो ओवरऑल जब डॉक्टर्स की कमी हो गए तो फिर नौकरी हम खोल भी दें तो डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं है। आज हमारे मेडिकल कॉलेजेस जो 2014 में जिसके अंदर 700-750 नौजवानों को MBBS का एडमिशन मिलता था, आज वो बढ़ा करके हमने 1700 कर दिया है। हम मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ा रहे हैं, ये लगभग 2500 बच्चों को हर साल हम डॉक्टर के नाते से तैयार करने की एक व्यवस्था बनाए, हमारा एक फोकस उस पर। फिर इसी प्रकार से पैरा
नर्सिंग पे पैरामेडिकल,
हाँ, पैरामेडिकल स्टाफ भी आगे बढ़े, नर्सिंग है या अलग प्रकार से जो हमें ये जो जरूरत होती है टेक्निकल स्टाफ की, तो ऐसे टेक्निकल लोगों का एक स्टाफ की वृद्धि हो। तो ये आपूर्ति पहले वर्कफोर्स की, वर्कफोर्स की आपूर्ति के बाद फिर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर जहाँ जहाँ भी हॉस्पिटल्स, आज हमारा 100 बेड का है, 150 बेड का है, उसको और आगे जहाँ 100 है वहाँ 200 करना, जहाँ 200 वहाँ 300 करना, ये क्रम भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर शुरू हो तो गया।
इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम कहें तो ये एग्रीकल्चर ओरिएंटेड बजट होगा कि ये हेल्थ ओरिएंटेड बजट होगा, या ये दोनों का मिश्रण होगा?
आवश्यकता के हिसाब से, आज देखिए हेल्थ की आवश्यकता, कोविड जो हमने झेला है
जी,
अब इसमें इतना बड़ी महामारी कभी आएगी ये पहले कभी सोचा नहीं था, लेकिन अगर एक बार महामारी आई है तो हमेशा हमेशा के लिए अपने आप को तैयार रखना, सुसज्जित रखना, तो इसलिए फोकस वो निश्चित रूप से बनेगा। लेकिन एक चीज पर फोकस करना है, इसका मतलब दूसरी चीज पर नहीं करना है,
वो नहीं होता, बट प्राथमिकता होती है कि
हमने हमने हर एक चीज पर फोकस किया है, शिक्षा।
जैसे पिछली बार आपका हेल्थ पे 4.6% खर्च था, तो क्या इस पर ये
बढ़ाएंगे?
और आपका कृषि पे करीब 12-13% खर्च था, तो क्या वो बढ़ के 15%?
इसमें प्राथमिकताएं बदलेंगी, इसमें प्राथमिकताएं बदलेंगी, क्योंकि जैसे हर बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स के हिसाब से हम करते हैं। किसान को आज सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पैदावार करने की समस्या नहीं है
जी,
उसकी बिक्री की समस्या,
बेचने की समस्या।
हाँ, तो बिक्री की समस्या के लिए मार्केटिंग की व्यवस्था, जैसे उदाहरण के लिए हमने गन्नौर की एक बहुत बड़ी सब्जी मंडी फल मंडी जिसको कहें, इसका प्रोजेक्ट हमारा पिछले 5 साल से उसकी जमीन ले ली गई, सब
व्यवस्था
स्लो था, अब उसको प्राथमिकता पर हमने लिया है कि इस वर्ष
तो आजादपुर मंडी को रिप्लेस कर देगा गन्नौर मंडी,
उससे बड़ी मंडी बनेगी।
अच्छा,
आजादपुर की मंडी तो 60-70 एकड़ में है, ये 550 एकड़ में है। यहाँ
इसमें बायर कहाँ से आएंगे गन्नौर मंडी में?
गन्नौर मंडी में ओपन है, ये इंटरनेशनल मंडी एक प्रकार की,
आएंगे कहाँ से बायर?
बाहर तो
क्यों आएंगे?
दिल्ली नहीं, देखिए फैसिलिटेट जब होंगे, हम इसमें टेक्नोलॉजी से भी चीज़ें करेंगे, हम इसमें शॉर्टिंग और पैकिंग ये सारे सिस्टम भी करेंगे, इसमें कोल्ड स्टोरेज भी लाएंगे, इसमें किसान को भी लाभ ये होगा कि उसको उचित मूल्य के ऊपर अपना सामान बेचने के लिए उसको एक प्लेटफॉर्म देंगे। और आज दिल्ली की जो आज़ादपुर मंडी अगर उसकी भी बात करें तो इतना दुविधा हो गई है वहाँ,
बहुत ज्यादा ट्रैफिक,
वो सारा क्योंकि बहुत दूर नहीं है,
वेस्टेज तार जनरेट होता है, आसपास के लोगों को बहुत दिक्कत है, पूरा इलाका खराब हो गया है।
नॉट मोर देन 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर है सारा,
तो ये रिप्लेस कर देगी, मतलब गन्नौर मंडी आजादपुर मंडी को
रिप्लेस करने की नहीं, मैं कह रहा वहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे, वहाँ अगर मानो एक मंडी रहेगी तो जिन लोगों को और आवश्यकता है तो वो यहाँ आएंगे। आज कोई चीज रिप्लेस नहीं करती किसी को। अब मान लो एयरपोर्ट हिसार बनेगा या जेवर बनेगा, तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कोई खत्म थोड़ी हो जाएगा।
आपका कि इसके लिए एक और नई डिमांड
है, चल रही, उसको पूर्ति करेगी,
ये केटर करेगी,
उसको पूर्ति करेगी।
डिमांड से ही एक और प्रश्न आगे आता है कि कोविड के दौरान डिमांड गिरी, पहले बहुत बुरी तरह गिरी, फिर सप्लाई भी गिरी क्योंकि लॉकडाउन हो गया, सप्लाई अब काफी हद तक स्थिति बेहतर हो गई। आपके अंदाज से डिमांड को स्टिमुलस करने के लिए राज्य सरकार क्या कर सकता है और क्या करेगा बजट में और आगे?
देखिए, हमारे यहाँ डिमांड की कोई बहुत कमी है ऐसा नहीं है। प्रदेश के अंदर जो है डिमांड, वो भी चूंकि हमने किसी को भी किसी के आर्थिक स्थिति को अभी तक कम नहीं होने दिया है। कृषि विभाग का जो हमारा जितना भी प्रोक्योरमेंट था वो बराबर जितना पिछले साल में था, इस साल भी उतना ही है। कोविड के होने के बावजूद भी 22,000 करोड़ रुपया हमारा जो किसान के माध्यम से और वो गया है प्रोक्योरमेंट में, ऐसे ही सर्विसेज में। हमारे यहाँ सर्विसेज में कोविड के दिनों में जो प्राइवेट सर्विसेज थी वो डाउन हुई, लेकिन उसमें भी हमने हर परिवार को, जो गरीब परिवार है उसको सहायता की, उसको पैसा दिया 4,000 रुपया महीने से लेकर के और 6,000 महीना भी। इंडस्ट्री को भी सैलरी देने के लिए बैंकों से व्यवस्था करके हमने 2-2 महीने का एडवांस उनको दिलवाया, सबवेंशन जो है उसको इंटरेस्ट का वो सरकार ने किया ताकि वो भी उनको सैलरी सब मिलती रहे, सर्विस भी पूरी चलती रही। हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट में भी एक भी महीने की हमारी सैलरी हमने रोकी नहीं है, बहुत बड़े जनों रोकी है, इसलिए हमारा जो इकोनॉमिक साइकिल है वो कहीं रुका नहीं है जिसमें से कोई डिमांड कम हुई हो, कोई डिमांड कम नहीं हुई। मोर ओवर हरियाणा को एक बड़ा लाभ क्या है कि दिल्ली को हम तीन तरफ से घेरते हैं
जी,
और दिल्ली की जो सारी डिमांड
की वो है मतलब एक बहुत
एक लोकेशनल एडवांटेज है,
जो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज
लोकेशनल एडवांटेज है। तो दिल्ली के साथ फिर और भी जो बड़े शहर हैं, चाहे उसमें हरियाणा के गुरुग्राम है, हरियाणा का
फरीदाबाद है, पंचकुला,
सोनीपत है, पंचकुला तो दिल्ली से दूर हो गया, मैं दिल्ली के अराउंड सोनीपत, गुड़गांव, फरीदाबाद एंड अगेन नोएडा, गाजियाबाद, ये सारे अगर मिला लें तो ये 4 करोड़ की आबादी है, और 4 करोड़ की आबादी की जो डिमांड है उसकी सप्लाई बहुत सी चीज़ों की हरियाणा करता है। तो कहीं डिमांड एंड सप्लाई में हमें बहुत अंतर पड़ा नहीं है इस समय तक, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई अलग से हमको प्रयत्न करना है। नॉर्मल हमारे जो प्रयत्न हैं उन प्रयत्नों में हमारी आर्थिक स्थिति जैसे आज आसपास के प्रदेशों में सबसे अच्छी है, हमारे चाहे वो मनी सप्लाई है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ।
अच्छी ब्रीफ पे आता हूँ आपकी, आपने इंडस्ट्री की बात की, एक तरफ आपने हरियाणा एंटरप्राइज एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जारी की और दूसरी तरफ आपने 75% रिजर्वेशन जारी कर दिए। तो एक तरफ से तो आप कह रहे हैं कि उद्योग बढ़ें और दूसरी तरफ से आप कह रहे हैं कि उद्योग आप बढ़ाओगे तो आपको 75% रिजर्वेशन देने पड़ेंगे। ये इससे अब इंडस्ट्री कंफ्यूज्ड है कि हरियाणा सरकार चाहती क्या है, क्या वो उद्योग को बढ़ाना चाहती है, क्या वो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना चाहती है, कि वो एम्प्लॉयमेंट को और उद्योग को कम करना चाहती है।
कोई कम नहीं करना चाहते, और इस 75% कोई उद्योग कम हो जाएगा ऐसा तो कोई थ्योरी है ही नहीं है ना। हमने तो इतना ही कहा है कि जितने लोगों ने एम्प्लॉयमेंट रखना है उनको अपने उद्योग के लिए एम्प्लॉयमेंट देनी है, उस एम्प्लॉयमेंट में प्राथमिकता ये दे दें कि हरियाणा के लोगों को पहले ले लेंगे। और मैं दूसरी बात बताता हूँ, ये ठीक है कि डिमांड होती है, लोकल डिमांड के हिसाब से हमने किया है 71%, इस ये हमने कोई अब किया ऐसा नहीं है, ये हमारा मैनिफेस्टो में ही था।
बिल्कुल मैनिफेस्टो में शुरू से था,
मैनिफेस्टो में शुरू से ही था, इसलिए उसका कोई विरोध उस समय नहीं हुआ, उसका विरोध आज भी नहीं है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, मिस नोमर कई चीज़ें हैं कि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कोई अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं है, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट 5-7% के बीच में रहती है, कभी वो 7% हो जाती है, कभी 5% हो जाती है। 5-7% के बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सारे के सारे लोग कोई प्राइवेट नौकरी के लिए जाते हैं ऐसा नहीं है, हमारा बहुत स्कोप है। हमारा सरकारी नौकरी में इच्छा लोगों की ज़्यादा रहती है, हमारे यहाँ लोग जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सर्विसेज हैं उसको भी पर्याप्त ले रहे हैं, हमारे यहाँ आर्मी में जाने वालों की बहुत इच्छा लोगों को रहती है
जी।
हमारे यहाँ एक नया जो सेक्टर खुल गया है वो स्पोर्ट्स का है, स्पोर्ट्स में भी हजारों लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, उनको स्पोर्ट्स
में आपका लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर, लार्जेस्ट जॉब क्रिएटर सर्विसेज सेक्टर है। सर्विसेज सेक्टर में आपकी लार्जेस्ट जॉब हरियाणवी के लिए, एक पढ़े लिखे हरियाणवी के लिए आईटी सर्विसेज, बीपीओ सर्विसेज, लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग रही है। HEPP या और किसी पॉलिसी के अंतर्गत आप क्या इन क्षेत्रों को कुछ बढ़ावा देना चाहते हैं या करेंगे इनके लिए?
हम हर क्षेत्र को बढ़ावा देंगे, मैं 75% की बात कर रहा था, वो केवल जिनकी सैलरी 50,000 रुपये से नीचे है केवल उसमें, और वो भी नॉन टेक्निकल में है, टेक्निकल चीज़ों में इसको हम लागू नहीं कर रहे हैं, नॉन टेक्निकल।
BPO का एक वर्कर टेक्निकल में आएगा कि नॉन टेक्निकल में आएगा?
अब ये तो व्याख्या जो है वो BPO की,
फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर टेक्निकल में आएगा नॉन टेक्निकल में आएगा?
देखिए सुपरवाइजर का काम टेक्निकल,
फोरमैन बताइए।
हाँ तो फोरमैन को टेक्निकल का विषय नहीं है, टेक्निकल एक टेक्निक होती है, फोरमैन की एक स्किलिंग होती है, इस स्किलिंग में हम अपने लोगों को स्किल्ड करेंगे। हमने
अप्लाई होगी फोरमैन पे, अप्लाई होगी
50,000 रुपये से नीचे अगर है तो होगी,
उसको स्किल उसको टेक्निकल नहीं माना जाएगा?
नहीं नहीं टेक्निकल है ही नहीं,
हो सकता है वो ITI का
ग्रेजुएट हो तो वो ITI पोस्ट के लिए अगर जाएगा तो वो टेक्निकल होगा, अगर वो जाता ही फोरमैन के लिए, फोरमैन ITI जरूरी नहीं है, फोरमैन तो एक ग्रेजुएट भी हो सकता है।
नहीं आप जैसे मारुति सुजुकी जैसी कंपनी है और भार्गव जी ने काफी विरोध किया इसका,
हमारी बात हुई है,
हमने उन्होंने कहा कि मैं तो मतलब ये इनसेन है पॉलिसी, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल
किया, कहना है कि हमने बनाई अकेले ऐसा नहीं है, महाराष्ट्र में बन गई है,
बाकी प्रदेशों में इतना 7 प्रदेशों में पॉलिसी बनी बट किसी प्रदेश ने इस पे ज्यादा जोर नहीं लगाया। ठीक है एक पॉलिटिकल अनाउंसमेंट हुई थी, हुई खत्म हो गई,
नहीं ऐसा नहीं है, कुल मिलाकर के इसका इम्पैक्ट क्या होगा तभी तो पता लगेगा ना, अभी तो इसका कोई शुरुआत ही नहीं हुई है। अब एक एक्ट बना है, एक्ट बनने के बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कुछ रूल्स बनेंगे, हमने उनसे बात की है और उसमें कभी आपकी आपत्तियां क्या कहेंगी आप बताइए। उसमें हमने एक और बात उनको कही है कि हमारे यहाँ जो भी कुछ पूरे हरियाणा में 22 जिले हैं, हमने कहा आपको एक स्वतंत्रता और हमने दिया कि आप 10% से ऊपर किसी जिले से लेने हैं नहीं लेने हैं, इसमें आपको फ्रीडम है। आप अगर मैक्सिमम 10 जिले हैं और मान लो न्यूनतम भी थोड़े थोड़े भी लेना शुरू करें, 22 जिलों के अंदर आपको 3-3% लोग लेने हैं, 4-4% लोग लेने हैं। ये कहीं एक जगह की उनको समस्या है कि कहीं एक जगह का प्रेशर ग्रुप ना बने। एक आध दो घटनाएं हुई हैं वहाँ, एक मारुति में घटना हुई
मानेसर में आपको याद है साल पहले, आपके कार्यकाल में नहीं बल्कि
पहले हुई है पहले, तो उन चीज़ों का उस समय था। आज हमारा युवक भी समझदार है, वो इस प्रकार की घटनाओं में शामिल नहीं होगा। कारण क्या, उसको भी पता है कि नौकरी का तो मेरे पे ऐसा जाना है
जी,
तो जिसको नौकरी करनी है फिर हम उसकी स्किलिंग कराएंगे। ये भी कहा है ऐसी सब इंडस्ट्री के साथ एमओयूज किए हैं कि उस स्किलिंग में आप उनको भर्ती करने से पहले 3 महीने का एक स्किल कोर्स कराइए। उस 3 महीने के स्किल कोर्स कराने के बाद आपको पता लग जाएगा कौन व्यक्ति, कौन युवक जो वर्कर कैसा है, उसमें आपको लगता है उसको प्रोविशन के बाद मत रखिए, रखना उन्हीं को है जो आपको सूट करते हैं। और आपको अगर नहीं मिलते हैं उस लेवल के लोग, ओपनली कहीं से भी जा ले सकते हैं। हमारा लोकल कोई भी लेवल का इंस्पेक्टर, लेबर इंस्पेक्टर ये वो उसमें
ये तंग करेंगे इनको?
नहीं करेगा।
लेबर इंस्पेक्टर आप जानते हैं एक जो जंतु है लेबर इंस्पेक्टर नाम का, उसका खौफ हर इंडस्ट्रियलिस्ट को होता है।
मैंने क्या किया, हमने तय कर दिया है कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ स्टेट लेवल का ही कमिश्नर कोई ऑर्डर कर सकता है, लेबर कमिश्नर येलो। और ये
साहब इस पे ना कई मतभेद काफी हुए हैं कि अब देखिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करिए, सरकारी हस्तक्षेप कम करिए, सारे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करिए, ऑटोमेट करिए। जैसे इनकम टैक्स में उन्होंने जो फेसलेस रिव्यू प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस किया, उसका मतलब मकसद ये था कि बाबू का हस्तक्षेप हर उद्योग में ना हो। लेकिन जब आप इस तरह के कदम लेते हैं जिसमें आप कहते हैं हम रिजर्वेशन करेंगे, तो लेबर इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, फायर इंस्पेक्टर, पुलिस, इन सब का हस्तक्षेप बढ़ जाता है।
कोई नहीं बढ़ेगा,
एक और
सुई मिल जाती है, कोई नहीं बढ़ेगा। सिर्फ हमारे यहाँ वही प्रावधान चल रहे हैं, आपने सेल्फ डिक्लेयर करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन में आपने जो कहा है वो ठीक होना चाहिए, बस
सेल्फ डिक्लेरेशन को सरकार मान लेगी,
मान लेगी
कानून को।
हाँ,
ये बहुत ही बढ़िया चीज आपने कही।
उसमें यदि कोई शिकायत आती है तब स्टेट लेवल का जो लेबर कमिश्नर है, आईएएस अधिकारी है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्टी कमिश्नर,
जो आपके साथ सीधा काम करता है वो ही उसकी
केवल उसको
मैसेज है।
हाँ बिल्कुल, केवल उसको कि आपने लिख के दिया, वो अगर वो लिख के दिया और कोई शिकायत नहीं है सॉल्व। अगर मानो लिख के दिया भी हमारे तो 75% लेबर हमारे हरियाणा की है, कोई आदमी कहता है ना साहब 75 नहीं तो 60% नहीं है, तो एक काउंटिंग करनी होगी, वो स्टेट लेवल का आदमी जाके कराएगा, नॉट मोर।
काम बढ़ गया उसके लिए
नहीं। देखिए काम तो बहुत सिंपल सा है, हम इतने काम जो करते हैं, नए नए काम करते हैं, उसे कुछ काम बढ़ते हैं कुछ घटते हैं।
उद्योगपति का काम बढ़ गया क्योंकि उसको फिर एक और
नहीं, ये आज सब चीज़ें ऑनलाइन है, कुछ नहीं है, उनको तो नोट करते जाना है। आखिर अभी भी तो अकाउंट रखते हैं, ऑनलाइन में अकाउंट रखते हैं, अपने वर्कर का नाम लिखेंगे, उसके आगे उसके एड्रेस लिख देंगे, बस और क्या करना उन्होंने।
तो इस नई पॉलिसी में जो आपने जनवरी में अनाउंस की, इसके लिए आपने एमएसएमई इसके लिए खास कोई तवज्जो दी है या खास कोई फोकस रखा है?
देखिए हमने जो हमारी एंटरप्रेन्योर पॉलिसी है उस पॉलिसी में बहुत सी तरह की कंसेशन दी हैं, बहुत सी तरह की सब्सिडीज दी हैं। वो लोकेशन क्या है उसकी, उसके हिसाब से हमने तय किया है। वो लोकेशन जितना अनडेवलप्ड एरिया में जाके करेंगे उसमें ज़्यादा उनको लाभ देंगे। ए बी सी डी 4 प्रकार के उनके हमने एरियाज तय किए हैं, ब्लॉक्स तय किए हैं। ए में हम ज़्यादा उनको इंसेंटिव नहीं देते हैं, हमारा
बी ब्लॉक और सी और डी में ज़्यादा,
डी में सबसे ज़्यादा,
तो
उससे कम सी में, उससे कम बी में, उससे कम ए में। ए में प्रायः जो नॉर्मल हमारी जितने भी प्रावधान है वो हम लागू करते हैं, डी में हम यहाँ तक करते हैं कि एक एम्प्लाई को अगर आप हरियाणा के आदमी को नौकरी देंगे तो आपको 4,000 रुपया महीना फॉर 3 इयर्स
आप डायरेक्ट इंसेंटिव देंगे। तो अगर आप लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री खड़ी करेंगे डी ब्लॉक में तो
4,000 रुपया महीना,
हाँ सरकार पैसे देगी लेबर इंप्लॉय करने के लिए,
लेबर इंप्लॉय,
मतलब सिंपली यही कहे है ना कि अगर कोई उद्योगपति डी ब्लॉक में करता है तो उसको
3 साल के लिए
पैसा,
यानी 48,000 रुपया साल का उनको हम देंगे।
ये तो बहुत बढ़िया है। तो इसी पॉलिसी के तहत आपने कुछ डिवोल्यूशन किया है पावर्स का, इसमें डीसी लेवल का अधिकारी काफी सारे परमिशन, अप्रूवल, क्लियरेंसेस दे सकता है, और ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत और इन सब चीजों के लिए एक बेहतर कदम है। इसको कार्य, इसको प्रोसेस में लाने के लिए या इसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपने कोई सिस्टम या कोई तरीका बनाया है इसको?
देखिए, एक तो ऑनलाइन पोर्टल बने हुए हैं
जी,
हमने उसकी लिमिट तय कर दी है कि 1 एकड़ जमीन अथवा 10 करोड़ रुपए तक की जो भी एंटरप्रेन्योरशिप है उसकी सारी क्लियरेंसेस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होंगी, और हम हर महीने उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं, कितनी एप्लीकेशन आई, टाइमली उसको हुआ नहीं हुआ, जो ऑब्जेक्शन था उसको पूरा किया कि नहीं किया, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद डीम्ड क्लियरेंसेस देते हैं।
डीम्ड क्लियरेंस के बारे में बताइए, कैसा ये संभव हो पाएगी एक छोटे उद्योगपति के लिए?
देखिए, उसने अप्लाई कर दिया और ऑनलाइन अप्लाई किया है, किसी भी अधिकारी जिसने देखना उसको देखता है, ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है, उसके बाद उसको अगर
इतने दिन के बाद
45 दिन
में उसको डीम्ड क्लियर माना जाएगा, आपत्ति नहीं जताई है,
मिला है, और आपत्ति जताते हैं वो भी टाइम बाउंड में उसको दूर करना है, और जिस दिन वो दूर कर देगा उसके 45 दिन में फिर उसको डीम्ड क्लियरेंस मिल जाएगी।
ये तो बहुत ही मतलब एक तरह से प्रोसेस रिफॉर्म्स किया है।
और जो 1 करोड़ 1 एकड़ से ज्यादा या 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंडस्ट्री है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उसको फिर हम एचईपीबी में और इवन कुछ इश्यूज हैं जो हमारी सब कमेटी बनी है मिनिस्टर्स की, वहाँ तक लेकर के आते हैं, और फिर उनको हाथों जो सब्सिडीज है। मेगा प्रोजेक्ट्स में तो स्पेशल कोई हमने किसी ने डिमांड की है किसी स्पेशल छूट की सब्सिडी में अथवा और कोई कंसेशन में, तो स्टेट लेवल की जो कमेटी है उसको क्लियर करते हैं, देते भी हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमसे बात करने के लिए और अपने विचार व्यक्त करने के लिए,
धन्यवाद
हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, धन्यवाद।
बहुत बहुत